ओम शांति, ओम शांति। कितना प्यारा मीठा सुंदर गीत हम सभी सुन भी रहे थे और अनुभव भी कर रहे थे कि हमारी मीठी वाणी ऐसी वाणी बनाने वाला हमारा मीठा प्यारा बाबा है, जो इस प्रकृति की भी महिमा हम सुन रहे थे कि उसको भी इतना मीठा बना देते हैं, सुखदायी बना देते हैं। और वैसे भी हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम साकार मम्मा बाबा की तपस्या भूमि में बैठे हैं, और यही वो हिस्ट्री हॉल है जहां मम्मा बाबा बच्चों को पढ़ाते थे, और यही पांडव भवन है जहां बाबा ने इतनी अच्छी पालना दी। तो सभी आज यहां पर इस चार धाम के में एक ये भी विशेष हमारा हिस्ट्री हॉल जो विशेष है चार धाम में यहां पर हम बैठे हैं, तो सभी को जरूर बाबा मम्मा की याद आती है। और हम भी अपना अनुभव ही आपको विशेष सुनाना चाहेंगे कि इस आत्मा की जो शरीर का नाम भावना है, और वैसे गुजरात में सौराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ और पालना मिली एक समर्पित जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन की जो हमें विशेष पालना मिली वो हमें मधुबन से मिली, और समर्पित रूप से सेवा हम दिल्ली में हस्तसाल सेंटर पर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इस ब्राह्मण जीवन की शुरुआत हुई वहां से हुई कि लौकिक में बड़ी सिस्टर 1970 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद ज्ञान में वो चली थी, और उनकी बहुत ही अच्छी लगन थी। ज्ञान में चलने के 2-3 वर्ष बाद उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था 73 के आसपास में, तो वो उनका ऑपरेशन हुआ अहमदाबाद में, और इसके बाद मतलब वो उनकी इतनी अच्छी लगन थी कि मैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दूं, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो ऐसा संभव नहीं था कि वो सेंटर पर रह करके पूर्ण रूप से सेवाएं कर सके, क्योंकि तबीयत का थोड़ा ऊपर नीचे तो जरूर रहता ही है, और वो भी 1973 की ये बात है। तो उस समय तो इतना जो है इंतजाम भी नहीं था, यानी कि मेडिकल जो है वो इतना रिफाइन नहीं था, लेकिन उस आत्मा की सेवा बहुत विशेष थी, क्योंकि अगर वो घर में नहीं रहते लौकिक घर में तो शायद हम लोग अभी आपके सामने भी, वो हमें नहीं पता, ड्रामा में तो बाबा कहते सब फिक्स है, लेकिन उस आत्मा की बहुत मेहनत रही पूरे परिवार के लिए कि जो 15 साल तक वो अकेली ज्ञान में चली, कोई भी ज्ञान नहीं सुनता था, और हम परिवार में सबसे छोटे थे और हम भी नहीं सुनते थे क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन ये मैं अपना परम सौभाग्य कहूंगी। और लौकिक रिलेशन में कोई उन्हीं के द्वारा उनको भी ज्ञान मिला था कि जो बाबा के समय वो संदेशी रही, कुमारी थी एक, कि बाबा के समय वो यहां पर थी, और वो संदेश ने संदेश दिया था कि इस आत्मा पर भी मेहनत करो, इस आत्मा पर मेहनत करो, ये जरूर बाबा की बनेगी, लेकिन हम सुनते नहीं थे। लेकिन यही हम कहेंगे कि इस संगम युग में, इस जन्म में हमने भगवान को नहीं ढूंढा, हमने कोई भक्ति नहीं की, हमने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन बाबा ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की, किसी न किसी आत्मा के द्वारा, विशेष इस आत्मा के द्वारा मेहनत की। और यहां तक भी हमने एक बार उनको कह दिया था कि आप हमें क्यों इतना सुनाते हो, देखो आप ज्ञान में चल रहे हो, पेरेंट्स आपको तो कुछ नहीं कहते हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हरेक अपने रूप से वो भक्ति में थे, माताजी पक्की वैष्णव भक्त थी, पिताजी शिव के भक्त थे, और सिस्टर जो है ज्ञान में चलती थी, तो हमने कहा हमें भी अपने रूप से चलने दीजिए, अब हमें क्यों कहते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं कह रहे, तो आप हमें भी ऐसा मतलब बार बार नहीं सुना ये ज्ञान। लेकिन ऐसा हमारी एक नासमझ बेसमझ, हम छोटे थे तो ऐसा कह दिया था उनको। लेकिन थोड़े बड़े हुए, शायद हम 8th क्लास में होंगे, तो उस समय उन्होंने कोई ज्ञान की ही ऐसे, यानी कि देखो सात्मा की कितनी विशेषता कि कितना भी कुछ भी कोई कहे, फादर जो है उनको भी 12 साल तक वो मधुबन शिविर जो यहाँ पांडवपुर में होती थी उसके लिए फॉर्म भरवाते रहे, और वो एक इतनी लगन उनकी थी, और इतना प्यार से वो कहते थे, मेहनत करते थे, तो हाँ कर देते थे, यस कर देते थे, फॉर्म भी भर लेते थे, लेकिन टाइम पर कहते थे देखो मैं कितना बिजी हूँ, बिजनेस है, टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो 12 साल तक उन्होंने भी ऐसे किया, तो भी उनको भी नहीं छोड़ा, और हमें भी ऐसा कहा तो भी तो नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही ज्ञान की चर्चा वो कर रहे थे और सुना रहे थे, तो तब हमें कुछ, उस समय हमारा कुछ दिमाग बाबा कहते खुल गया था, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, और ये अभी तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब माइंड में इतना क्लियर अभी ये बातें नहीं है, लेकिन इतना हमने कहा था कि हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाएंगे, हमें लौकिक दुनियावी जीवन तो वो भी अच्छा नहीं लगता था, तो इस रूप से तो हमें नहीं जीवन जीना है कि उस दुनिया में जाए हम ऐसा करें वैसा करें, नहीं हम इसी ज्ञान में चलेंगे। और मधुबन की बहुत महिमा सुनाते थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी थे, तो वो एक एक मास जब उनकी 2 मास छुट्टियां पड़ती थी या बीच में भी जैसे ले करके उनकी, क्योंकि सेंटर पर तो रह नहीं पाते थे लेकिन यहाँ की सेवाएं वो मैनेज करके करते थे, और बहुत लगन रहती थी उनके मधुबन आने की कि कब मुझे मौका मिले और मैं 1 मास 2 मास के लिए सेवा के लिए जाऊं। तो मधुबन की बहुत महिमा करते थे तो हमें भी अच्छा लगता था, हमने कहा हाँ हम ज्ञान में चलेंगे, लेकिन हम क्योंकि और भी बहनें सभी आती थी, सेवाएं वो करवाते थे, जैसे जूनागढ़ उस समय गुजरात में रमीला बहन, दमयंती बहन, वो बहनें गीता दीदी जो भावनगर में थे, तो ये सभी दीदियां आती थी, और भी दीदियां आती थी, उनसे सेवाएं करवाते थे। तो हम कहते थे कि लेकिन हम ऐसा समर्पित जीवन नहीं बनाएंगे, रहेंगे पक्के बाबा के बच्चे ही, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, लेकिन समर्पित जीवन नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ मधुबन की सेवा हम जरूर करेंगे, मधुबन में हम आएंगे जाएंगे। लेकिन हमें मदर भी कहती थी कि हाँ आप सीए करना, हमारा भी इंटरेस्ट था उसमें, कहा हम सीए करेंगे, जैसे भी अपना करेंगे कुछ भी, लेकिन हम मधुबन में जाएंगे आएंगे, लेकिन समर्पित नहीं होंगे। तो इसके बाद जैसे हम ज्ञान में चलना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो 85 की बात है कि हम पढ़ ही रहे थे, कॉलेज में थे उस समय, तो मधुबन से पदयात्रा भारत में उस समय 85 में 12 जगह से भारत एकता युवा पदयात्रा निकल रही थी, तो उसमें ये निमंत्रण मिला था गुजरात में कि जो भी बहने कन्याएं जाना चाहती है तो मधुबन की मधुबन निवासी भाई विशेषकर, यहाँ तो उस समय भाई ही सभी गए थे मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे भाई उसमें थे, संख्या नहीं पता हमें, तो वो थे और बाकी कुछ बहने कन्याएं ऐसे जा सकते हैं। तो हमें जब हमने ये सुना तो इतना ज्ञान में हम मजबूत नहीं थे, बहुत एक बेसिक रूप से ही हम चल रहे थे, तो हमारा एक इंटरेस्ट बना कि नहीं हमें जाना जरूर है। मधुबन की ये पदयात्रा 2 मास की पैदल यात्रा जो माउंट आबू से दिल्ली तक जानी थी, तो हमें घर से भी वैसे तो थोड़ा थोड़ा वो बंधन डालते थे मदर, तो बस जैसे भी छुट्टी मिल गई और जो भी फॉर्मेलिटीज थी बताया था ये ऐसे ये सब चाहिए, तो हम करके हम मधुबन में आए और यही हिस्ट्री हॉल था, दादी जी मिल रही थी और शायद उस समय पदयात्रा वालों से ही या जो जाने वाले थे या हम आए थे उस समय कि परिचय देना था और जाएंगे, तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी इधर बैठे थे और हम छोटी आयु थी हमारी 17-18 साल होंगे ऐसी एज होंगी, लेकिन हम बहुत मतलब शारीरिक रूप से बहुत वीक थे, तो वो देख करके दादी और हमने जब परिचय दिया कि हम पदयात्रा में जाएंगे और फॉर्मेलिटीज जो इसकी इंजेक्शन लगवाना या ये जो भी कुछ चाहिए मेडिसिन या जो भी कुछ हो डॉक्टर के सर्टिफिकेट वो सब वो में मिल गया था, तो वो हम लेकर के आ गए थे और दादी जी से कहा दादी जी हम भी पदयात्रा में जाना चाहते हैं और हमें भी आप परमिशन दीजिए, और घर से तो हमें मिल गई है और हमारी भी दिल है। तो दादी ने जब सुना और हमें देखा तो उस समय तो ऐसे ही जैसे बैठे सूट पहनते थे, छोटे थे, कन्या थे, पढ़ाई भी चल रही थी और एक पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था लौकिक पढ़ाई में भी, और उस समय जो भी कुछ रीजन था आरक्षण का तो इसलिए एग्जाम लेट होते जा रहे थे कॉलेज के, तो हमें उस समय चांस मिल गया। तो हमने कहा दादी आप भी छुट्टी देंगे, दादी हमें पूरा देख रहे थे और दादी तो पूरा समर्पण भाव, दादी की ये विशेषता हमने सदा देखी शुरू से लेकर आखिरी तक कि बाबा बाबा और बाबा, सदा अपने आप को दादी निमित समझती थी, कोई भी ऐसी बात आती थी तो भी बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, मैं निमित आत्मा हूं। और हमें देख करके दादी को आया कि ये कैसे पदयात्रा में जाएगी, ये पदयात्रा इतनी कमजोर है, ये चलेगी कैसे कि जहां 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कभी एक बार 40 किलोमीटर भी चले थे तो ऐसे ऐसे चलना होता है, ये कैसे चलेगी। तो दादी ऐसे ही बाबा आप जानो, बाबा आप देखे, मतलब इस प्रकार से दादी जैसे, वो बात तो हम बता नहीं सकेंगे कैसे, तो सब जानते हैं कि दादी कैसे बोलती थी जो दादी से मिले हैं, तो बाबा आप देखे। तो दादी ने मतलब इस रूप से परमिशन दादी ने दे दी और हमें भी बहुत बहुत ही खुशी हुई कि चलो दादी जी ने हमें परमिशन दे दी। लेकिन दादी को थोड़ा डाउट था, वो तो बताया कि ये कैसे यात्रा करेंगी। तो इसके बाद हम यहां से ही दादी जी ने ही वो हरी झंडी दी और हम यात्रा में मधुबन निवासियों के साथ ही निकले, कुछ बहने थी। तो माउंट आबू से हम नीचे संगम भवन गए और इसके बाद जैसे जैसे यात्रा आगे चलती गई तो तो यहां से भी मतलब वो एक ही दिन में ये 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर ऐसे नीचे संगम भवन तक, इतना तो पहले दिन ही इतना चलने का रहा। और पहले दिन तो सभी को ही मतलब थोड़ा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ऐसे ही लंबी यात्रा 2 मास की ये चली। तो दादी बीच में पूछते थे, रतनवेनी दादी जी विशेष राजस्थान जोन के भी इंचार्ज थे उस समय तो, और विशेष पदयात्रा के भी देखभाल दादी जी करते थे। तो दादी पूछते थे कि और औरों के भी द्वारा ये मैसेज मिलता था कि ये कैसे हैं। हमारे साथ एक और बहन थी तो दादी को कहते थे कि दादी ये तो उड़न खटोला है कि जो अपने सुखधाम के बाबा राम भाई वो भी थे पदयात्रा के इंचार्ज और मेन इंचार्ज बनारसी भाई, डॉक्टर बनारसी भाई थे उसमें यात्रा में। तो वो तो कहते थे कि ये सचमुच में उड़न खटोले की, क्योंकि सबसे पहले हम आगे हम चलते थे, हम दोनों बहनें थी और इसके बाद सभी और मधुबन निवासी जो भी यात्रा के थे, बहनें भी कुछ थी और भाई सारे थे। तो ये बाबा की कमाल और दादी जी की ब्लेसिंग, जो दादी ने बाबा को सौंप दिया तो बाबा ने हमें संभाला, दादी ने संभाला कि हमें एक भी छाला नहीं पड़ा। नहीं तो बहुतों को मतलब मैक्सिमम बहुतों को छाला पड़ा था, पैरों में छाले पड़ गए और चलने में भी दिक्कत होती थी उनको कभी कभी, वो बस में भी जो साथ में ट्रांसपोर्ट होता था उसमें भी बैठना पड़ा, लेकिन हम लोग एक बार भी बस में नहीं बैठे या जो भी अपना गाड़ी वगैरह कार थी उसमें भी नहीं बैठे और न पैरों में छाला पड़ा। और इतना अथक बन करके मतलब वो यात्रा रही, और हम कहेंगे कि बहुत अच्छा ये हमारा भाग्य रहा क्योंकि साथ में सभी मधुबन निवासी थे। तो उनके एक योग तपस्या जहां पर इस भूमि पर जो इतने पुराने भाई रह रहे हैं और उनके डायरेक्शन में भी जो गाइड भी वो कर रहे हैं और वो योग का वाइब्रेशन वो पालना हमें मिली। तो 2 मास की यात्रा के बाद जैसे कि हमारा जीवन ही बदल गया और बहुत बल मिला हमें। उसके बाद और चांस मिला था कि जो भी मधुबन में सेवा करना चाहते हैं, पदयात्री युद्ध थे सारे और उस समय कोई प्रोग्राम भी होना था, तो कहा कि वो इस यात्रा में से यानी कि सेवा के लिए रुक सकते हैं। तो हम भी जो है वो सेवा में रुक गए। तो 2 के साथ और 2 मास मिल गए हमें, तो 4 मास हमने सेवा की जहां पर इस भूमि और इस भूमि के निवासियों का साथ मिला और बाबा की ये यहाँ की ये पालना तपस्या भूमि का साथ मिला। तो एक जीवन में एक बदलाव आने लगा। तो यहाँ की सेवा फिर हमें और आगे मिलती रही। तो इसके बाद एक जीवन का लक्ष्य जो था कि नहीं हम पढ़ाई करें, और पढ़ाई छोड़ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा ने कैसे पढ़ाई उस लौकिक पढ़ाई से हमें मुक्त कर दिया, उसके जो अटैचमेंट से वो हमें पता नहीं चला। और इसके बाद यहां हमने ऑलराउंड सेवा का हमें मौका मिला। पहले भंडारे की सेवा, सब्जी काटने की, रोटी बनाने की। तो उसमें मैं कहूंगी कि सबसे अच्छी जो हमारी तपस्या रही उस कर्मणा सेवा में रही। उसमें हमें मौका मिला 15 दिन मौन रखने का भी। तो और उस मौन से हमें इतना बल मिला और हम 15 दिन के बाद भी बोलना नहीं चाह रहे थे कि हम और बोले, यानी कि 15 दिन के बाद भी, लेकिन कहा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आवाज जो भी मतलब बंद हो जाती है यार, ऐसे कब तक मौन। तो ऐसे जबरदस्ती हमसे बुलवाया गया, लेकिन उस मौन से जो प्राप्ति हो रही थी, उस अंतर्मुखता से इतनी प्राप्ति हो रही थी कि जैसे बाबा के साथ इतने अटैच होते जा रहे थे हम। और उस कर्मणा सेवा, भंडारे की सेवा से हमें बहुत बल मिला। इसके बाद हमें गाइड सेवा भी, जैसे पांडव भवन जो आते थे तो जैसे जैसे बीच बीच में हम आते थे, शुरू में ऐसे एक एक मास, दो दो मास सेवा करते थे, तो वो गाइड सेवा भी करते थे यहाँ, और फिर ऑफिशियल वर्क भी, फिर बाद में वो भी सेवा हुई। लेकिन इस बाबा के घर की सेवा से हमारा जो कहते हैं दिमाग के कपाट, जो ताला खुल गया, कि जो लॉक लगा हुआ था कि मुझे समर्पित जीवन नहीं अपना बनाना है, ये समर्पित लाइफ बहुत मुश्किल है और हम सहन नहीं कर सकते हैं, हमारे में सहन शक्ति की कमी थी, कि हम कोई हमें कहें और ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान की गहराई आपके अंदर आती जाती है, और उस ज्ञान की गहराई और योग का बल, उस बल से हम बाबा के साथ अटैच होते जाते हैं, तो वो बाबा के साथ का अटैचमेंट हमारे जो साथ में जो और बंधन है, आसपास के जो भी लौकिक है, चाहे मन का है, चाहे संस्कारों का है, चाहे शरीर का है, किसी भी प्रकार का जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त होते चले जाते, क्योंकि बाबा के साथ का अटैचमेंट हमें सर्व प्रकार के बंधन, हमारे मन का विशेष जो बंधन है, हमारे अपने संकल्प का बंधन है कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, हम तो ऐसा चला नहीं सकते, तो वो फिर हमारा ऐसा वैसा नहीं चलता, कि अब वैसा चलता है कि जो बाबा कह रहे अब वैसे चलना है, हमारा ऐसा जो है वो संकल्प को बदल करके बाबा ऐसा कहता है तो हमें ऐसा करना है, तो ये उसमें परिवर्तन होता चला गया। तो इसके बाद हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि नहीं, मुझे बाबा इतना मुरली में कहते हैं कि मुझे हैंड्स चाहिए, कन्याएं तो कन्याओं को इतना बाबा प्यार करता है, कन्याओं की इतनी महिमा करता है, कन्याओं के लिए बाबा कहते हैं कि कन्या तो माना वो मेरे राइट हैंड है, तो सेवा करना, और हमें अपना मैपन है नहीं, ये हमारा ईगो ही तो काम कर रहा है कि नहीं हम नहीं ऐसा जीवन जी सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आकर के हमने कहा बाबा हम अपने जीवन को अब जैसा आप कह रहे हैं ऐसा अपना समर्पित जीवन बनाना चाहते हैं। तो ये बात हमने वहां की जो निमित बहन थी उनको बोला, तो उन्होंने बड़ी दादी को बताया कि दादी जी अब ये अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, और हमने ये जरूर कहा था कि हमें गुजरात में अभी मतलब वहां पर नहीं भेजना, क्योंकि लौकिक में थोड़ा मतलब माताजी का बहुत अटैचमेंट था, और वो मतलब थोड़ा उसके निमित्त एक उसके भी एक बात बता देते हैं कि माताजी कुछ न कुछ किसी भी रूप से एक बंधन डालती थी, और वो यहां तक भी कहते थे कि आप हमारी इज्जत गवा रहे हो, ऐसी वाइट ड्रेस पहनते हो, और या आप अपना ऐसे सोच रहे हो कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे, बड़ी सिस्टर तो थी ही, तो हम कहते थे, हम हंसी हंसी में कहते थे आपकी इज्जत नहीं जाएगी, और फिर कहते थे मेरी नाक कट जाएगी, तो हम कहते थे आपकी नाक बहुत ऊंची हो जाएगी, आपकी इज्जत भी बहुत ऊंची हो जाएगी, तो वो बात वो समझते नहीं थे, और किसी न किसी रूप से वो थोड़ा थोड़ा रुकावट डालते रहते, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। तो एक बार दीपावली के दिन के आसपास ही भैया दूज के निमित्त जो लौकिक में जो मामा लगते हैं और लगते थे मतलब, और वो हाईकोर्ट के जज भी थे, तो उस समय वो तिलक के लिए आए, तो अहमदाबाद में वो रहते थे तो आए थे वो, और उनको उन्होंने कहा कि अपनी प्रॉब्लम अपने ब्रदर को सुनाई कि देखो ये ज्ञान में चलते और अपने जीवन को ऐसा समर्पित करना भी चाहती हैं, तो आप इनको थोड़ा समझाइए। तो उन्होंने हमसे मतलब पूछते गए कि ये बाबा की ही कमाल कि हम ज्यादा उनसे बात नहीं करते थे, हम किसी से भी बहुत कम बात करते थे और उनसे तो बहुत कम मिलना होता था। तो उन्होंने जैसे जैसे हमसे एक ये भी है ना कि हमारी 18 वर्ष की आयु हो चुकी थी, तो एक जज है तो वो बात भी तो उसी रूप से करेंगे, निर्णय भी उसी रूप से उनको देना होगा। तो वो एक एक बात जैसे पूछते गए और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या मतलब अभी याद नहीं है कि क्या पूछते गए थे, लेकिन जो जो भी बात वो पूछ रहे थे तो उनका आंसर पड़े, क्योंकि उस समय तो बहुत नशा था और बाबा 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 बस दिल में बस बैठ गया था। तो बाबा ने ही वो जवाब दिलवाया और सब वो सेटिस्फाइड हो गए। और उन्होंने कहा मदर को बुला करके कि देखो आप इनको अब रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका निर्णय पक्का है। तो उन्होंने एक हम कहेंगे कि जज के नाते से बहुत अच्छा डिसीजन दिया और फैसला सुनाया हमारी फेवर में, जबकि उनको तो मदर को था कि ये रोकेंगे मना करेंगे, लेकिन और ये उल्टा ही हो गया। और जब हमने कहा ना 18 वर्ष की आयु तो हमारी हो चुकी थी, तो इस आधार से भी उन्होंने और जब हमारा निर्णय पक्का देख लिया तो कहा कि आपको ये डर हो कल को कि ये पता नहीं आगे चल पाए न चल पाए, लेकिन ये बहुत अच्छे रूप से चलेंगे और आप इसको अब रोकेंगे नहीं। तो वहां से हमारा और बंधन यानी थोड़ा जो था तो वो भी सहज हो गया और हम इधर मधुबन सेवा में ही आए थे, तब हमने ये निर्णय दीदी को बताया था। तो उन्होंने दादी को बताया, बड़ी दादी ने कहा कि अभी इस समय गुलजार दादी के लिए कहा कि दिल्ली में गुलजार दादी जी को हैंड्स की जरूरत है, तो आप गुलजार दादी जी से मिलवाइए इनको। तो गुलजार दादी से मिलवाया तो दादी ने कहा, दादी बहुत खुश हुए और कहा अच्छा अब मैं तो 2 दिन के बाद दिल्ली जा रही हूँ, तो आप इसी ट्रेन से आप दिल्ली मेरे साथ इसी ट्रेन में आना है। तो हमारी तो कोई ऐसी समर्पित लाइफ की तो कोई तैयारी, हम तो पहले से 2 मास से यहाँ करीब थे यहाँ पर सेवा में, तो लेकिन दादी ने कहा 2 दिन में आपको हमारे साथ मतलब अहमदाबाद से बैठना है उस ट्रेन में। तो हमने कहा जी दादी, और हम गए और इधर से परमिशन तो एक मदर को तो बहुत ज्यादा वो मतलब ऐसा रोक रहे थे या जो भी मतलब उनको इच्छा नहीं थी कि ये अभी जाएं, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय था और हम तो अपनी तैयारी करके और सहयोग भी मिला, क्योंकि बड़ी सिस्टर तो ज्ञान में थी और एक और सिस्टर भी ज्ञान में चल पड़ी थी, तो उनका पूरा सहयोग मिला और हम तैयार हो गए और उसी ट्रेन में जिसमें दादी जी को जाना था, तो हम हमारे जो है दादी जी तो एक जीवन का आधार ही रहे, इस समर्पित जीवन को कैसे और आगे चलाना है तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि दादी जी के लिए मैं क्या कहूँ, दादी आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए। तो दादी के साथ ही फिर हम पांडव भवन करोल बाग जो दिल्ली में हम गए, तो एक बहन और थी तो उनको तो जब भी और जहां सेवा के लिए जाना था भेज दिया था, तो हमें मेरठ के लिए दादी ने बड़ी दादी ने हमारे लिए बोला था प्रकाशमणि दादी ने कि इनको मेरठ में देवता दादी के पास भेजना है, और देवता दादी जी के पास भी हैंड्स की कमी थी और जो पुराने होंगे तो उनको मालूम होगा कि दादी जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, देवता दादी जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और हम इतने ही ज्यादा कमजोर थे, मीन्स इमोशनल थे, हम कोई बात सुन नहीं सकते थे, हम सहन नहीं कर सकते थे किसी की कोई एक बात यानी डांट सुन नहीं सकते थे, ऐसा नेचर था। लेकिन इसलिए तो बाबा ने और दादी को निमित्त बना के भेजा कि इनको कहाँ भेजना है कि जहां ये स्ट्रांग बनेगी। और जब कोई मधुबन निवासी वरिष्ठ भाई कहते भी थे कि जहां चार दिन भी जो सिस्टर को कि आप रह नहीं सकते, तो वहां ये चार साल से रह रहे, तो वहां मतलब इतना बाबा ने मुझे स्ट्रांग बनाया। और दादी के लिए था कि प्रकाशमणि दादी जी के लिए कि दादी ने भेजा है, हमें जरूर रहना है, और जहां जरूरत है अभी सेवा की तो मुझे ये सेवा जरूर करनी है। और अपने देवता दादी जी के द्वारा भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी बहुत एक्यूरेट थी, सुबह 5:30 बजे वो नीचे क्लासरूम में पहुंच जाती थी, और जो पहले भी चलता था यहाँ पर भी कि मम्मा बाबा की क्लास चलाते थे और वो सुनते थे, इसके बाद योग करते थे, फिर मुरली क्लास वो चलाते थे। तो देवता दादी जी से बहुत से ध्यान की भी बातें सुनने को मिली, और दादी जी ने हमें भी 2 बार ये बात कही देवता दादी ने कि आप यज्ञ की वो गई हुई आत्मा है। नाम भी बताया था कि ऐसे से ये आत्मा गई थी और अब आप वापस फिर आई हो। तो मैंने कहा जी दादी, ये तो हमारा सौभाग्य है आप ये कह रहे, इसलिए बाबा से और दादियों से तो हमारा बहुत प्यार है। तो वहां पर हमने 4.5 साल के करीब सेवाएं दी मेरठ में, फिर इसके बाद हम दिल्ली में, फिर वहां का पाठ शुरू हुआ। तो गुलजार दादी जी के साथ हम, क्योंकि देवता दादी जब लेने के लिए आए थे 15 दिन के बाद मेरठ से पांडव भवन दिल्ली में, तो गुलजार दादी ने जब भी कहा कि देवता इनको अभी यहाँ थोड़े दिन रहने दो, क्योंकि अभी फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनकी सेवाएं चल रही हैं, तो देवता दादी ने कहा नहीं दादी ने मेरे लिए भेजा है ना, मैं अभी अभी लेके जाऊंगी। तो दादियों का आपसी स्नेह, तो वो फिर हम वही गए थे। तो फिर गुलजार दादी जी के साथ फिर हमें कुछ समय और रहने को मिला, तो दादी जी ने हमें अपने पास ही रखा। तो दादी जहां जाते थे तो वहां भी अपने साथ लेकर के जाते थे, और बहुत स्नेह प्यार और पालना गुलजार दादी जी के द्वारा हमें मिली। और दादी जी के द्वारा हमें ये सीखने को मिला देवता दादी से तो कैसे एक स्ट्रांग बनना है, एक निडर, एक शिव शक्ति बनना है, वो देवता दादी जी से सीखने को मिला। और बड़ी दादी जी से तो जैसे हमने कहा समर्पण भाव, बाबा बाबा बाबा, सदा अपने को निमित्त समझना, तो ये बड़ी दादी जी के द्वारा मिला। और गुलजार दादी जी के द्वारा कि बहुत दादी जी गंभीर, गंभीरता की मूर्त, और जहां एक शब्द बोलना है तो वहां दूसरा शब्द दादी नहीं निकालती थी, इतना गंभीरता अंतर्मुखता की, और एक साइलेंस पावर दादी जी के अंदर थी। तो वो दादी को देख करके बाबा ही ये तो सभी अनुभव करते ही थे और करते ही हैं अभी भी, कि दादी और बाबा एक समान ही, अभी तो देखो दादी जी बाबा के साथ ही हैं। तो वो दादी जी के द्वारा हमें मिला। और लो और लव का बैलेंस भी, दादी बहुत प्यार भी देती थी लेकिन नियम जो जहां कायदे हैं श्रीमद है वहां पर दादी कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करती थी, वो शिक्षा भी दादी जरूर देती थी। तो वो दादी जी के द्वारा सीखने को मिला। और दादी की बहुत, क्योंकि जहां हम 29 साल से अभी जिस सेंटर पर हम वैसे समर्पित लाइफ 35-36 वर्ष हो गए समर्पित जीवन को, लेकिन 29 वर्षों से हम जहां रहते हैं हस्तसाल दिल्ली में, तो उनकी देखभाल दादी जी ही, यानी कि जो निमित्त जिनके द्वारा सेंटर खुला और वहां की जमीन देने के निमित्त भी बने, तो उन्होंने दादी जी को कहा कि दादी इसका कनेक्शन इधर से करे इधर से करे, दादी ने कहा इसका कनेक्शन दादी देखेगी। कि हस्तसाल का सेंटर की सेवाएं को दादी देखेगी, तो ये सभी ताली बजाए हमारे लिए तो है ही है, लेकिन सबके लिए तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य रहा। तो दादी ने कहा और दादी खुद देखभाल करती थी, मींस दादी तो दादी थे, बाबा का रथ थे और दिल्ली जोन की भी सेवाओं के निमित्त दादी थे, लेकिन जहां जरूरत रहती थी तो हम दादी जी से फोन से पूछ लेते थे, सन्मुख जाकर के पूछते थे। कभी दादी जी का भी फोन आ जाता था जब वो सेंटर नया मतलब 500 गज में ही मतलब वो बन रहा था, तो दादी को था कि शायद मेरा अट्रैक्शन उसमें जा रहा होगा, क्योंकि जब दूसरी जगह हम रहते थे तो दादी का फोन आया एक बार गुलजार दादी जी का, अच्छा भावना आप तो अभी बहुत खुश होंगे, खुश कि अभी नया सेंटर बन रहा है ना। मैंने कहा दादी जी तो अभी तो वहां जाएंगे। मैंने कहा नहीं दादी, जैसे आपका डायरेक्शन होगा और जिस रूप से आप कहेंगे, आप बन रहा है सेंटर लेकिन आपके डायरेक्शन के अनुसार ही सब होगा ना दादी, जैसे आप कहेंगे। तो दादी ने कहा ठीक है। तो माना दादी बीच बीच में टेस्ट भी लेती थी कि इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है और उसमें एक बहुत मतलब कहां बुद्धि जा रही है, तो यानी लेकिन हमारा समर्पण भाव सदा रहता था दादियों के साथ इतना कि नहीं दादी आप जैसे कहेंगे, जब कहेंगे, जिस भी रूप से कहेंगे हम तैयार हैं। तो वहां फिर जब सेवाएं शुरू हुई तो इसके निमित्त दादी जी से पूछते रहते थे, कहते थे, और कोई भी मतलब बात होती थी तो दादी इसका हमें फौरन निर्णय भी देते थे। और एक अटैचमेंट से कैसे एक परिवार वालों को भी दादी ने मुक्त किया, तो वो भी एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि लौकिक मदर जो है कि वो बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट था, तो कहते थे दादी को कि दादी जी इनको 6-6 मास में आप भेजना, आप कहां दिल्ली और कहां गुजरात में तो 24 घंटे लग जाते हैं, और इतना दूरी तो दादी कहते थे कि नहीं, इतना अटैचमेंट नहीं रखना। और वो भी इतना मतलब वहां जाने के बाद भी वो बुलाती थी कि अब यहां ही सेंटर बन गया है, घर में ही सेंटर बन गया है, यही देखो अब ऊपर में पूरा सेंटर बन गया है, अब आप यहां पर आ जाए। तो हम कहते थे कि वो सेंटर हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए तो घर ही है, क्योंकि वो दादी के द्वारा और हमें एक गुलजार दादी जी के द्वारा और सब दादियों के द्वारा हमें वो एक शक्ति मिली। हम कहते थे कि नहीं, और इतना आधा आधा घंटा बात करके वो रोते भी थे, लेकिन एक हम कहेंगे ना गुलजार दादी जी के द्वारा इतना नष्टो मोहा जो एक स्थिति का जो है दादी जी के द्वारा, वो भी प्रेरणा हमें मिली और वो बल भी मिला हमें। तो इसके पश्चात दादी जैसे जैसे मधुबन में ज्यादा रहना दादी का होता था तो मिलना भी कम हो गया था दादी से, लेकिन मधुबन में आते थे तो दो बार जरूर दादी से मिलके जाते थे, नहीं तो लगता था कि जैसे कि हम मधुबन आए लेकिन कमी रह गई, दादी से तो मिले ही नहीं है। और जब दादी बॉम्बे में गए तो एक दादी का एक शुरू से ही जैसे हम कोई बात दादी को बता के जाते थे या फोन पे भी कहते थे, तो दादी का इसके बाद उस बात को एक सकाश इतनी मिलती थी कि जैसे कि वो प्रॉब्लम तो और जो बात तो जैसे कि खत्म हो गई। और दादी फिर 3 साल तक मधुबन में नहीं आए। लास्ट जब दादी से मिलना हुआ कि जब इसके बाद दादी का मधुबन में नहीं आना था, तो हम लास्ट दादी से गुलजार दादी से मिलने गए, तो दादी को मैंने कहा कि दादी पहचाना, क्योंकि उस समय दादी तो बिल्कुल उपराम हो चुके थे। तो दादी ने कहा हाँ पहचाना। ने कहा से, तो कहा दिल्ली से। ने कहा और, तो कहा थोड़ा सोचा, फिर दादी ने कहा नहीं और ज्यादा सोचेंगे ना तो बाबा भूल जाएगा कि क्या नाम है, कौन सा स्थान है वो, यानी कि ये सोचेंगे तो बाबा भूल जाएगा, इतनी देर तो बाबा भूल जाएगा ना, यानी मतलब इतना विस्तार दादी ने नहीं कहा किया, हम बता रहे हैं, दादी ने इतना कहा कि बाबा भूल जाएगा और याद करेंगे तुम तो। میں نے کہا جی دادی. تو دادی ہم بھی ایسا کیا پروشارتھ کریں جو ہمیں بھی بابا نہ بھولے. تو کہا دیکھو کچھ بھی کرو نا, تو یہ سوچو بابا میرے ساتھ ہے, بابا مجھے دیکھ رہا ہے, بابا میرے ساتھ بیٹھا ہے, بابا میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, بابا میرے ساتھ کام کر رہا ہے, بابا مجھے ڈائریکشن دے رہا ہے. ہر کرم کرتے بابا بابا کرتے رہو. یہ لاسٹ دادی کا یہاں دل مدھوبن میں ملنا ہوا. پھر ایک بار بامبے میں بھی ملے تھے جب, تو لیکن دادی بھولتے ہی نہیں تھے, درشتی ہی ایک وردانی مورت ہی بن گئے تھے دادی, ساکشاتکار مورت ہی. تو ادھر دادی کے یہ انتم یعنی کہ جو ایک وردانی بول ہم سبھی کے لیے کہ یہی دادیوں نے پروشارتھ کیا, بابا مما نے کیا کہ ہر سمے بابا بابا اور بابا یہی صدا رہے ہمارے دل میں اور کوئی نہیں. کیونکہ جہاں بابا ہم سے دور ہوتا ہے تو وہاں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, اور جہاں ہم سب باتوں کو چھوڑ کر کے جیسے دادی جانکی جی بے فکر بادشاہ, میں بابا کی بابا میرا, میں کون میرا کون, یہ دادی کا جو پاٹھ پکا تھا اپنی آدرنیہ جانکی دادی جی کا اور سب دادیوں کا, یہی کسی نہ کسی روپ سے بابا بابا بابا. تو وہی ہم سب کو پریرنا دے رہا ہے کہ ہم سبھی آج اور سبھی سنکلپ کریں گے کہ جو ابھی کمی رہ گئی ہے, ہم سب میں ہی ابھی تو کمی رہ گئی ہے, اور جو بابا ہم بچوں کو اب ساکشاتکار مورت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ہمارے چہرے اور چلن کے دوارا جو بابا کی سیوا ہو, یہ بابا ہم سے چاہتے ہیں. ایک ایک چاہے بابا کا چھوٹا بچہ ہے, یہ چھوٹی کنیا چھوٹی نہیں یہ بہت بڑی ہے, تو ایسے ہر ایک کے دوارا بابا اب ایسی سیوا چاہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ میرا ساکشاتکار مورت بنے. تو ہم سبھی یہ سنکلپ درڑ بناتے ہیں, کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ جہاں درڑتا ہے وہی میرے مہارتھی بچے ہیں اور وہی پاس وتھ آنر ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے سنکلپ کو درڑ کرتے ہیں. انوبھو کی گیان کی باتیں تو بہت سنتے رہتے ہیں. کچھ سمے کے لیے ہم اس سنکلپ کو درڑ بناتے ہوئے یوگ کرتے ہیں اور بابا کے آگے اپنا ہم سنکلپ رکھتے ہیں کہ بابا مما آدرنیہ سبھی دادیاں ہمارے ورشٹھ, ہم نے پرتیکش یا اپرتیکش روپ سے آپ سے پالنا لی ہے, اب ہمارا کرتویہ ہے بابا آپ کی پرتیکشتا کرنا. اب اس پرتیکشتا کا کاریہ کو ہم تیور گتی سے کریں گے. آج سے ہم درڑ سنکلپ کرتے ہیں اور اس کے لیے مجھے جو بھی کاریہ کرنا ہے اس کو بھی کرنے کا ہم درڑ سنکلپ کرتے ہیں. اب چلتے ہیں سبھی بابا کے پاس وطن میں. باپ دادا دونوں ہی وطن میں, ہمارا باہے پسار کر کے سواگت کر رہے ہیں. اور باپ دادا کہہ رہے ہیں آؤ میرے میٹھے لاڈلے بچے آؤ, باپ دادا کی سنیہ بھری اس شکتیشالی درشٹی बाबा के समीप ले जा रही हैं। मैं आत्मा बाप दादा की बाहों में समा गई हूं। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। बाबा का वरदानी बोल समान भव का बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति में स्थित हूं। और ये शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में हूं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर के पूरे विश्व को सकाश